रेहान अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था। अगले हफ्ते से उनके शो की शूटिंग स्टार्ट करनी थी, सेट तैयार हो रहा था और परसों से उसे उसी शो पर अपना पूरा ध्यान लगाना था, जिसके लिए कल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी था। इसलिए वो आज सारा काम खत्म करके उसे शान को हैंडओवर करना चाहता था, क्योंकि क्रिएटिव वर्क संभालने का जिम्मा रेहान का था और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क शान संभालने वाला था। साथ में बाकी के शो और प्ले, सबकी जिम्मेदारी शान को संभालनी थी। रेहान पूरी शिद्दत से काम में लगा हुआ था। अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए ही फोन पिक कर लिया। हेलो। कुछ पल बाद दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी सी आवाज आई, हेलो। आवाज सुनकर तो रेहान के कान ही खड़े हो गए थे। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने एक बार फिर कहा, हेलो हेलो, मैं रश्मि बोल रही हूँ। दूसरी तरह से रश्मि ने अब क्लियर कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि रेहान ने उसको पहचाना नहीं है। पर रेहान की तो जैसे आज दिल की हसरत पूरी हो गई थी, लबों पर मुस्कान छा गई, पर उसने अपनी खुशी को जाहिर नहीं होने दिया और फॉर्मली बोला, हम कहो। उसके रिएक्शन से रश्मि कुछ हैरान हो गई और खुद से ही बोली, इसे आज क्या हो गया, ऐसे तो हमेशा चेप होता है और आज इतना फॉर्मली बात कर रहा है। चल छोड़, तुझे क्या, तुझे कौन सा उसके साथ रोमांटिक बातें करनी है, तुझे भी तो फॉर्मल टॉक ही करनी है, तू तो सीधे काम की बात कर बस। उसने खुद को समझाया, फिर आराम से बोली, हाँ वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। फिलहाल तो मैं बिजी हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो हम शाम को मिल सकते हैं, जहाँ भी तुम कहो। रेहान ने बड़ी ही चालाकी दिखाते हुए अपना पासा फेंक दिया। उसकी बात सुनकर रश्मि कुछ पल को सोचने में पड़ गई, फिर उसने सोचने के बाद कहा, ठीक है मैं आपको एड्रेस सेंड कर देती हूँ, जब आप वहाँ पहुँचने वाले हों तो बस 5 मिनट पहले मुझे कॉल कर दीजिएगा। ओके बाय, रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और फ़ोन काट दिया। उसके लबों पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। वहीं दूसरी तरफ रश्मि फ़ोन को अपने सीने से लगाते हुए सोचते हुए बोली, बहुत शातिर है ये, मेरे काम के बहाने अपना काम निकाल लिया। खैर मुझे कौन सा उसके साथ डेट पर जाना है, काम की बात करूंगी और निकल जाऊंगी वहां से। उसने खुद को समझाया, फिर कमरे से निकलकर नीचे चली गई। शान सारा दिन ऑफिस के काम में बिजी था और आरवी रोज की तरह सबके साथ अपना वक्त बिता रही थी। रेहान निकलने से पहले उसके कैबिन में आया। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो बहुत सीरियस है। वो आकर शान के सामने बैठ गया। शान ने नजरें उछाकर देखा, फिर उसके चेहरे का मुआयना करते हुए बोला, ये बैंगन जैसी शक्ल क्यों बनाई हुई है आज? रेहान ने गुस्से से कहा, क्योंकि तू इंसान से गधा बन गया है। शान की भौहें तन गई। उसने उसको घूरते हुए कहा, क्या हुआ है, ये किस लहजे में बात कर रहा है तू मुझसे? तू बता, तेरे और भाभी के बीच क्या चल रहा है? रेहान ने अब भी गुस्से से सवाल किया। उसके मुंह से भाभी शब्द सुनकर पहले तो शान हैरान हो गया, अगले ही पल उसको घूरते हुए बोला, भाभी? रेहान ने भी उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए कहा, हाँ भाभी, वजह चाहे जो रही हो, तूने उनसे शादी की है। वो नहीं आई थी तुझसे कहने कि आकर उनका हाथ थाम ले, तू गया था, तो अब वो तेरी जिम्मेदारी है, वाइफ है तेरी। माना इस तरह से तुम्हारी शादी हुई, इतनी जल्दी प्यार होना मुश्किल है, पर एटलीस्ट तू उन्हें अपनी वाइफ होने का मान सम्मान इज्जत तो दे सकता है। रेहान पल भर ठहरा और संजीदगी से बोला, हर लड़की धोखेबाज नहीं होती मेरे यार, दुनिया में सारी लड़कियां नियति नहीं होती। भगवान ने तुझे बिन मांगे हीरा गिफ्ट किया है, उनकी कद्र कर, ऐसा ना हो अपनी बेवकूफ़ी और नफरत के चक्कर में तू उन्हें हमेशा के लिए खो दे। भाभी वो लड़की है जो तेरे लिए बनी है, अगर ऐसा नहीं होता तो तेरा उनसे यूं रिश्ता नहीं जुड़ता। मुझे नहीं पता तेरे और भाभी के बीच क्या चल रहा है, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी गलत हुआ है, अभी भी वक्त है उसे ठीक करने के लिए। वो वैसी नहीं है जैसा तू समझता है, एटलीस्ट तू उन्हें खुले दिल से एक मौका तो देकर देख, मत चला उन्हें अपनी नफरत की आग में, वो तेरी गुनहगार नहीं है, फिर क्यों उस मासूम को किसी और के किए की सज़ा दे रहा है? शान जो तब से खामोशी से सब सुन रहा था, आखिर में उसने भौं उचकाकर उससे सवाल कर ही लिया, अच्छा और तुझे ये किसने कह दिया कि वो मासूम है? रेहान ने उसको घूरते हुए कहा, मुझे क्या, खुद तुझे भी ये पता है, हाथ पर हाथ धरे तो तू भी नहीं बैठा है। उन्हें अपने घर और अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तू इतना बेताब है कि तूने शेखर को भाभी के बारे में सब पता करने का ऑर्डर दे दिया है। उसकी बात सुनकर अब शान कुछ हैरानी से उसे देखने लगा। रेहान ने अब आगे कहा, तो करवा लिया ना तूने भाभी के बारे में सब पता, कुछ हाथ लगा तेरे, मिल गया सबूत कि वो वैसी है जैसा तू उन्हें समझता है? नहीं मिला ना, मिलेगा भी कैसे जब वो वैसी है ही नहीं। अब तो 1 महीना हो गया तुझे उनके साथ रहते रहते, अब भी तुझे लगता है कि वो अच्छाई का नाटक कर रही है? नाटक कोई 1 दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता कर सकता है, पर 1 महीना नामुमकिन है। वो जैसी दिखती है वैसी ही है, उन्होंने तुझे और इस रिश्ते को दिल से अपनाया था, और अगर तुझमें थोड़ी भी अक्ल होगी तो तू भी उन पर अब बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, उन्हें नियति के दिए धोखे की सज़ा नहीं देगा और अपने रिश्ते को एक मौका देगा। एक बात और, ये मत सोचियो कि मुझे भाभी ने अपनी सिफारिश करने के लिए भेजा है। मुझे बड़ी माँ ने बताया है कि पिछले एक महीने तेरे और भाभी के बीच बातचीत बंद है। इतना तो मैं उन्हें समझ गया हूँ कि अगर वो तुझसे बात नहीं कर रही, तुझे इग्नोर कर रही हैं, तो ज़रूर तूने ही कोई ऐसी बात कही होगी जो उनके स्वाभिमान पर लगी, वरना वो इतनी रूड बिहेव कभी कर ही नहीं सकती हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि बस एक बार अपने दिमाग से नियति के दिए धोखे को निकालकर भाभी के साथ बिताए एक महीने के बारे में सोच कि क्या वो सच में एक धोखेबाज चालबाज लड़की है जो सबको धोखा दे रही है, या सोने के दिल वाली एक परी है जो तेरी जिंदगी को खुशियों से भरने आई है। इतना कहकर वो उठकर कैबिन से बाहर निकल गया। वहीं शान पिछले एक महीने के बारे में सोचने लगा। उसने शेखर जो उसके लिए काम करता था उससे आरबी के बारे में पता करवाया था, उसके कॉलेज लाइफ के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, ताकि जान सके कि आखिर सच है क्या। पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अब जो था ही नहीं वो मिलता कैसे। आरवी एक सुलझी हुई शांत स्वभाव की समझदार लड़की थी। हर जगह से उसके बारे में पॉजिटिव चीजें ही पता चली थी। उसे ये भी पता चला था कि कॉलेज टाइम से एक लड़का उसका दीवाना था, पर आरवी ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। मतलब साफ था कि वो वैसी लड़की नहीं थी जैसा वो सोचता था। बस एक पहेली थी कि अगर वो गलत नहीं थी तो उसके होने वाले पति ने जो कहा और किया वो क्यों किया था। पिछले एक महीने में घर में भी वो सबके साथ बहुत अच्छे से रह रही थी, सब खुश थे उससे। अंशु की तो दुनिया ही उसके इर्द गिर्द बस गई थी। सोने से उठते तक उसे वही चाहिए होती थी। आरवी ने उसको एक माँ की तरह संभाल लिया था, बिल्कुल वैसे जैसे किसी वक्त पर सावित्री जी उसे संभालती थी। उसको बहुत प्यार करती थी, उसका ध्यान रखती थी। आखिर में अब शान की सोच उसके लिए बदलने लगी थी। उसको वो दिन याद आ गया जब उसने आरवी को जाने क्या क्या कह दिया था। उसकी बातों से आरवी की आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब साफ था उसकी बातों ने उसे बहुत हर्ट किया था। वो यही सब सोच रहा था।
शाम के 7 बजे वो किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। आज शान भी ऑफिस से जल्दी निकल गया था तो वो जल्दी ही घर पहुंच गया। हॉल में सुभाष जी बैठे अर्पिता जी से अपने जमाने की बातें कर रहे थे और अंशु वहीं बैठी अपने टॉयज से खेल रही थी। शान को देखते ही वो दौड़ती हुई उसके पास चली गई। शान ने भी झुककर उसको अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके चेहरे को चूम लिया। उसने बाकी दोनों को ग्रीट किया, फिर अंशु से बात करते हुए किचन के तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि इस वक्त आरवी किचन में ही होगी। उसको किचन की तरफ जाता देख दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। शान ने किचन में कदम रखा तो देखा आरवी खाना बनाने में बिजी थी। छाया उसकी मदद कर रही थी और सौरभ अलग खाना बना रहा था, मतलब वो शान के लिए खाना बना रहा था। ये देखकर शान को याद आ गया कि कैसे उसके वो बातें कहने के बाद से आरवी ने उसके लिए खाना बनाना छोड़ दिया था। ये देखकर उसकी भौहें तन गईं। आरवी से बात करने तो आया था पर अब उसने अपना मन बदल दिया। उसने छाया को देखकर कहा, छाया एक कप कॉफ़ी मिलेगी? आवाज़ सुनकर तीनों के तीनों चौंक गई। छाया और सौरभ ने उसे देखा तो सही पर आरवी ने देखा तक नहीं, अपना काम करती रही। छाया शान को हैरानी से देखते हुए बोली, भैया आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, मेरा ही घर है तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? आदत के अनुसार उसकी आवाज़ में रौब झलक रहा था, जिसे सुनकर आरवी ने मन ही मन कहा, हाँ आपका घर है, जहाँ मर्जी तांडव करते फिरे। शुक्र है ये नहीं कहते कि इस घर में रहने वाले लोगों पर भी आपका ही हक है, जिसकी मर्जी सर पर चढ़कर नाचे कोई कुछ नहीं कह सकता। आरवी ने बोलते बोलते मुंह बनाया, शान की नज़रें उसी पर टिकी हुई थी। शान का सवाल सुनकर छाया ने झट से कहा, नहीं भैया मेरा वो मतलब नहीं था, वो आप कभी इस तरफ आते नहीं ना, बस इसीलिए पूछ लिया। एक कॉफ़ी दे दो तो मैं जाऊँ यहाँ से। एक बार फिर उसकी सख्त आवाज़ आरवी के कानों में पड़ी तो उसने चिढ़कर कहा, सुना दिया अपना हुक्म, लॉर्ड गवर्नर हैं, सच के दानव हैं ये, आवाज़ में ज़रा भी सॉफ्टनेस जो आ जाए तो दुनिया में बवंडर ही ना आ जाए। शान अब भी आरवी को ही देख रहा था। छाया उसकी कॉफ़ी बनाने लगी। शान ने पहले आरवी को देखा फिर छाया को देखकर कहा, छाया अंशु की पढ़ाई कैसी चल रही है? उसका सवाल सुनकर आरवी ने तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, बड़ी फ़िक्र हो रही है आज अपनी बेटी की पढ़ाई की, इतनी जल्दी कैसे याद आ गया? स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए इतना समझाया तब तो सांप सूंघ गया हो, ऐसे खामोश खड़े थे, अब आए हैं पूछने की पढ़ाई कैसी चल रही है अंशु की? उसने मुँह बनाते हुए शान पर से नज़रें फेर ली। वहीं शान का सवाल सुनकर छाया ने सर झुकाकर कहा, भैया अंशु को तो भाभी पढ़ाती है, तो अपनी भाभी को कहे कि अंशु की तैयारी करवा दे, 2 दिन बाद उसके एडमिशन के लिए स्कूल जाना है, 2nd क्लास के हिसाब से प्रिपरेशन करवा दे और ख़ुद को भी तैयार कर ले अंशु के साथ चलने के लिए उसकी माँ के तौर पर। शान ने बड़ी सहजता से सब कह दिया। उसकी बात सुनकर आरवी की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने हैरान परेशान नज़रों से शान को देखा पर शान की नज़रें तो छाया पर थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अंशु ने एक्साइटेड होकर शान से सवाल किया, डैडी अब अंशु भी स्कूल जाएगी? आप स्कूल जाना चाहती हैं? बदले में शान ने ही सवाल कर दिया।
जिसे सुनकर अंशु ने झट से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, यस डैडी, मम्मा ने बताया स्कूल में बहुत मजा आता है, वहाँ अंशु के जितने और भी बच्चे होंगे, अंशु उनसे दोस्ती कर लेगी और उनके साथ बहुत मस्ती करेगी, स्टडी भी करेगी। अंशु बहुत एक्साइटेड लग रही थी। शान ने प्यार से उसके गाल को चूम लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, आप उसी स्कूल में जाएंगी जहां आपके डैडी ने पढ़ाई की है, और आपको भी वो जगह बहुत पसंद आएगी। पता है आपके डैडी को उनका स्कूल बहुत पसंद है, वहां आपके जैसे छोटे छोटे और भी बच्चे होंगे, आपको सबके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा, बिल्कुल डैडी की प्रिंसेस जैसे। हम परसों आपका एडमिशन करवा देंगे, उसके बाद आप भी स्कूल जाएंगी। उसकी बात सुनकर वो और भी ज्यादा खुश हो गई। आरवी ने अब शान पर से नजरें हटा ली और वापस काम में लग गई। छाया ने शान को कॉफी दी तो वो अंशु को लेकर नहा से चला गया। छाया ने अब आरवी की तरह मुड़कर कुछ कहना चाहा पर वो पहले ही बोल पड़ी, मैंने सुन लिया है। छाया खुश हो गई। आरवी ने अब मन ही मन कहा, तो इसीलिए आज यहाँ आकर दर्शन दे गए, पर आज इन्हें हुआ क्या है, पहली बार मुझे अंशु की माँ कहकर पुकारा है। वो बेचारी अपने ख्यालों में उलझी हुई खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद सबने साथ में डिनर किया और फिर अंशु शान के साथ रूम में चली गई। आरवी सुभाष जी के कमरे में चली गई, उनके पैरों की मालिश की, फिर उन्हें दवाई देकर गुड नाइट कहकर अपने और शान के कमरे की तरफ बढ़ गई। ये उसका रोज का ही था, जब तक वो नहीं आती शान अंशु के साथ खेल लेता था। आज भी दोनों मस्ती कर रहे थे। आरवी ने उन्हें देखा, फिर कबर्ड से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और अंशु की तरफ बढ़ते हुए बोली, बस आज के लिए बहुत मस्ती हो गई, अब जल्दी से लेटिए, मम्मा आपको सुला दे। अंशु झट से उसकी बात सुनकर बिस्तर पर लेट गई। ये देखकर शान जहां हैरान था, वहीं आरवी के लबों पर मुस्कान ठहरी हुई थी। वो उसके पास बैठ गई और उसके सर पर प्यार से थपकी देते हुए कहानी सुनाने लगी। कुछ देर बाद अंशिका सो गई तो आरवी ने उसको अच्छे से कवर किया, फिर प्यार से उसके माथे को चूमकर सोफे की तरफ बढ़ गई। शान खामोशी से उसको देखता रहा, जबकि आरवी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, चुपचाप जाकर सोफे पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। शान खामोशी से कुछ देर उसे देखता रहा, फिर वो भी लेट गया।